परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कबीर परमात्मा कहते, भक्ति बीज होए जो अंसा, अरतारों तास के 71 वंशा। होए जो हमारी सत्साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुनात्माओं, अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा, लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे। अपुनात्माओं, जैसे इस सत्संग में रह रहकर हम बताते रहते हैं कि जब ये चौथा युग आता है कलयुग, और कलयुग की अब पिछली पीढ़ी होती है, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करवाते हैं, स्वयं आते हैं या इस दास जैसे अपने दास को भेज देते हैं, और सत भक्ति को प्रारंभ करवाते हैं। वो सभी नाम प्रदान करवा कर या भक्ति शुरू करवाते हैं। तो कोई 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, क्योंकि इसका स्वभाव है परमात्मा का, ये दुख नहीं देता, सुख ही सुख देता है। पुनात्माओं, जो सुख में पहले से भी सुखी थे और परमात्मा की 4 पूर्व जन्म के पुण्य अधिक थे, जिस कारण से इस शरण में आ जाते हैं, और वो कुछ दिन लगते भी ठीक ढंग से हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष सत भक्ति ठीक करते हैं, फिर उनमें स्वाभाविक है कोई ना कोई कुछ दिनों में, क्योंकि ये ज्ञान सुनकर सबको याद हो जाएगा 5-4 वर्ष में, 2-3 वर्ष में, और फिर क्योंकि ये तो आखिरी सांस तक का ट्रीटमेंट है, आखिरी सांस तक ये जाप मंत्र रहनी करनी या मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर वो क्या करते हैं, बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, धीरे धीरे वो मर्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं, लोक लाज में आकर। फिर उनको कोई आपत्ति भी नहीं आती, क्योंकि पहले भी संस्कार अच्छे थे और फिर भी सत भक्ति 2-3 वर्ष उन्होंने अच्छी कर ली, तो वो पुण्यों का ढेर हो गया, इस भक्ति की कमाई का ढेर हो गया उनका, तो फिर वो धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, और फिर भी कोई आपत्ति नहीं आती क्योंकि वो पुण्य चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो नाश कर लिया सारे जीवन का। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको सारनाम नहीं मिलता, केवल सतनाम तक वो रह जाते हैं, तो वो फिर इस काल के जाल में फंस जाते हैं, काल इनको ले जाता है। प्रथम मंत्र आप जाप करते हो, इनमें उन यहाँ के देवताओं की भी कमाई है, इनका मजदूरी है, वो धन बहुत इकट्ठा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा का जाप आपको दिया जाता है या मजदूरी दी जाती है, तो इस कमाई के आधार से आप कोई जाएगा विष्णु के लोक में, पहले ब्रह्मा के लोक में गए उस प्रथम मंत्र के जाप की कमाई से, जो ब्रह्मा के जाप की कमाई है, वहां पूंजी समाप्त की, उसके बाद विष्णु जी के लोक में वहां देवता बन जाते हैं, फिर उस मंत्र की कमाई जो आपको दी जाती है प्रथम मंत्र में, सात मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट वाला मंत्र आपका ये कबीर पर उस सतपुरुष की भक्ति की कमाई है, और बाकी जो बीच के मंत्र जो हैं ये इन देवताओं के जो आपको दिए हैं इनके मंत्र हैं। उसके बाद शंकर भगवान की जो मंत्र दे रखे है उस मंत्र की कमाई भक्ति से शक्ति से आप शिवलोक में चले जाओगे, वहां गण बन जाओगे, वहां पता नहीं अच्छे अच्छे देवता बन जाओगे, फिर वहां पूंजी समाप्त होने के बाद गणेश के लोक में जाओगे, सिद्धियां हो जाएंगी, वहां आकाश में घूमना सैर सपट्टे करना, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, उसके बाद फिर कहां जाओगे सतनाम के प्रथम मंत्र ओम मंत्र के जाप से आप ब्रह्म लोक में जाओगे, वहां इंद्र भी बन सकते हो, महा इंद्र भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो, अपनी पूंजी को ओम नाम की कमाई को वहां बर्बाद करोगे। उसके बाद रह गया वो सतनाम में दूसरा मंत्र, दो अक्षर का जो जाप है, एक दूसरे अक्षर का जो जाप है उसकी कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके आधार से फिर आप वो परमात्मा से विमुख प्राणी कहां जाएगा। इस काल ने एक नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक बना रखे हैं, तो उन लोकों में उस ब्रह्म लोक की सबसे उत्तम सुविधाएं हैं और ज्यादा उनकी चार्जेज हैं, लेकिन यह कमाई इतनी हो जाती है कई हजार युगों तक भी समाप्त नहीं होती है। तो उन ही जो अब वर्तमान में साधना करके भगवान इस मार्ग से विचलित हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी ये बना को देता है, कमाई उनकी होती है और पाप ये कमाते हैं। शंकर संहार करे बता के ठेका ले रहे क्या शंकर जी मानस मारण का, और विष्णु जी यहां रोके रखे, तो ये सारे पाप इनके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी भेज दिया पृथ्वी पर काल में, क्योंकि इनके पाप भी तो इतने बनवाने हैं, रावण गेल लड़ाई हुई, सीता ठुआ दी, रावण गेल युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए, तो रामचंद्र के बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे वह, क्योंकि उसकी पत्नी को छुड़वाने के लिए नाश हुआ था। ऐसे श्री कृष्ण जी को यहां भेज दिया, जरा सिंह मारा, फलाना मारा है, और फिर पता नहीं कितनी गलतियां करवा देता है। 16,008 पत्नियां श्री कृष्ण ने ग्रहण करी, तो इनके कति कर्म फड़वा के, और जब इनकी व दूसरे मंत्र की कमाई भी नाश हो लेगी, फिर इन्हें ठाकर पृथ्वी पर पटक देता है। पुनात्मा इतना भयंकर जाल है, ये जीव के समझ की बात नहीं, परमेश्वर ही समझा सकते हैं, कबीर परमेश्वर की ही रजा से ही अपनी बुद्धि में अब आन लगी है, निमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण थी। तो कहने का भाव ये है, जो दास आपको निष्कर्ष बताना चाहता है कि ये जो समय है भक्ति का, इसमें ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और अब ये बिजली पेड़ी हजार वर्ष तक रहेगी, हजारों वर्षों तक चलेगा ये तत्व ज्ञान, इस दौरान जो पार हो गया तो हो गया, ना रहे फिर बात नहीं बिगड़ेगी, फिर बात नहीं बन पाओगी कई युगों तक। अब कहने का भाव ये है कि जो जिनको सारनाम प्राप्त हो गया और वो भी इसी तरह विमुख हो गए, जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, एक तो गुरुद्रोही होकर जाता है नखरे करके, तो वो यहां से गुरुद्रोही हो गया, जो बिल्कुल किसी कारण से गुरुजी में दोष निकाल कर चला जाता है, फिर सौ जगह बकवाद करता है, वो तो गुरुद्रोही। उसको तो असंग जन्म मनुष्य जीवन ही मिल सकता, उसकी सारी कैंसिल कर दी जाएगी यहाँ की कमाई। और ऐसे जो से पहले प्रोसीजर से वैसे ही वो हट गया, चला गया, फिर नहीं आया, मतलब गुरुजी में दोष मन में स्वाभाविक नहीं आया, ऊपरले मन तो नहीं, अपने आप ही नहीं आता उनके, और वो वैसे संसार समाज में फिर विचलित हो जाती हैं। तो उन भोली आत्माओं को परमात्मा, यहां एक मिनी सतलोक है, जैसे राजदूत भवन होता है प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, वहां पर रखता है इन सब जीवों को बीज रूप में, और वहां उसमें परमात्मा के उस लोक में जीव की अपनी कोई कमाई भक्ति की नष्ट नहीं होती है। तो वो कई युगों से वो वहां स्टॉक है। अब आप जी को परमात्मा ने ये ज्ञान देकर आपका खेत संवार दिया और इसके अंदर बीज बो दिया भक्ति का, आपके घर पर जो संतान अब आवेगी या वर्तमान में आपके साथ है, तो आप जी का कर्तव्य अपने आप बन जाएगा कि उनको आप भक्ति मार्ग पर लगाओ। लगेंगे वो, क्योंकि ये सारा खेल परमात्मा कर रहे हैं। आप जी को मनमाने किसी पुण्य आत्मा जो पहले आपके घर भेज रखी है मालिक ने, उसको शरण में लेने के लिए ही आपके तक ये संदेश पहुंचाया हो, फिर आने वाले जो बच्चे आज आपके हैं उनका फिर आगे संतान होएगी, तो वो स्टॉक में ताया करें आओगे सारे के सारे, उनके पहले के पुण्य इतने होंगे या किसी चीज का अभाव उनको नहीं होगा, और उन जो उनके माता पिता होंगे उनको उन बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो भक्ति बाधक नहीं बनेंगे, और माता पिता भी सत भक्ति करते रहेंगे, बच्चे भी सत भक्ति करते रहेंगे, और ऐसे 101 पीढ़ी तक। परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा तारु तास के 71 वंशा। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। यम किंकर काल के ये दूत, ये उस आत्मा के निकट नहीं आओगे जो कबीर परमेश्वर का हंस है, और कहते तेरा खानदान पार हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। दर्द बंद दरबेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी ही 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, दो चार की के चल ये उधर हंस अपार। न जाने कितने पार हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अपुन आत्माओं, ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है परमात्मा ने जो दिया है, कि एक बार अगर हम सीधे यूं कहें कि जैसे दूसरे संत हैं राधा स्वामी पंथ के, इनके गुरु भूत बन गए, ये झूठे गुरु थे, तो कोई नहीं माने इस बात ने। इन्हों कहे रामपाल तो मेंटल है, सबकी आलोचना करता है, अपने आप को पता नहीं ये क्या समझता है। मुन्ना आत्माओं, ना तो रामपाल मेंटल है और ना अपने आप को कुछ समझता, अपने आप को दास समझता है, लेकिन इस दास को एक अनमोल खजाना मिल गया है, और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि संत अज्ञान को हटाऊं। राधा स्वामी पंथ का अपरमात्मा की वाणी आपने पढ़ी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरुआ मर गए वे हो गए भूत मसाने। एक राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु से हमारे भक्त का डिस्कशन हुआ तो वो कहने लगे कि हजूर जी साहेब, हजूर साहेब कहे ये परम धनी वो शिवदयाल जी जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, यानी राधा स्वामी का प्रवर्तक। तो राधा स्वामी का श्रद्धालु कहने लगा कि शिवदयाल जी महाराज जो थे वो परम धनी थे, पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने ही सतलोक की का भेद खोलिया, उससे पहले किसी ने नहीं खोला। तो वो भक्त कहने लगा भाई क्या आपके परम धनी इस कलयुग से पहले किसी युग में आए, कब कोई प्रमाण है? वो कहने लगा ना, इससे पहले का कोई प्रमाण नहीं। और कबीर जी चारों युग प्रमाण है, चारों युगों में आए, सतयुग में सतशुक्रत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। तो फिर तेरे परम धनी पहले कहां सोए थे भाई, अगर ये परम धनी थे तो? चुप हो गया, कहां पहले तो ना है भाई। तो यहां परमेश्वर की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाण, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाण। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज का जीवनी आपको दिखाते हैं पुण्यात्माओं। और जब तक ये आप नहीं आंखों देखोगे तो आपके इस दास के इस मौखिक वचन का असर नहीं होगा, बल्कि विरोध बन जाता है। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी, ये सेठ लाला प्रताप सिंह ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा, सर्वाधार सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। 17वीं बार राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद, इतने इतने। ये स्वरूप है उस परम धनी जी का। राधा स्वामी परम पुरुष, पूर्ण धनी, हजूर स्वामी जी महाराज। अब देखना इसके 78 पृष्ठ पे आपको एक कहानी है इसकी, इनमें वो 71वां वचन ये दिखाते हैं। इन्होंने गीता की तरह इनके नंबर ला रखे हैं, श्लोक की तरह, इतना ऑथेंटिक ज्ञान मानते हैं ये। ये पृष्ठ नंबर 78 पे 71वां वचन, अब बुक्की जी का जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इनको कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो जाती, अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था। और जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, परम धनी जी हुक्का पीते थे, कबीर जी कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार। कथा करने के बाद जब जोटा लाया करते, रेस्ट करते फरमाते थे तो हुक्का पिया करते थे, या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। अपुन आत्मा, एक और यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा बीच में उदाहरण देते हैं। ये राधा स्वामी वाले जो श्रद्धालु हैं, ये भ्रमित कर रखे इनके परिचरों ने। वह अपनी दुकान बनाए रखने के लिए ऊट पटांग छुरी बना ली उन्होंने। अब हमारे भक्त उनसे चर्चा करते हैं तो पूरे गुरु, वो खुद कहते हैं राधा स्वामी वाले के, पूरे गुरु से मोक्ष होता है। पूरे गुरु की पहचान क्या होती है? प्रथम पहचान तो राधा स्वामी वाले बताते हैं कि पूरा गुरु जो होता है वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकने देता, और दूसरा यह है कि वो पैसे का हाथ नहीं लगाता, पैसे नहीं लेता। अब पुण्य आत्माओं, अब इसमें खुद प्रमाण है कि उस परम धनी शिवदयाल जी के चरण का अंगूठा व बुक्की चूसा करती, और वो शंकर रहा होता या वैसे दर्शन दे रहा होता उसमें, और उसके चरणों पर जब मत्था टेकने वाले आते श्रद्धालु तो उनसे कहा जाता तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस बुक्की ने ना हटाओ। तो उनकी कहां तक सच्चाई है वह बात जो कहते हैं कि पूरा गुरु मत्था चरण नहीं छूने देता, तो उनके जो प्रवर्तक थे वो ही चरण छुआया करते थे। रही बात पैसे की, नो कहीं पैसे ना लेते। अब पैसा का दान तो होना ही चाहिए, परमात्मा खुद कहते हैं गीता जी में लिखा है कि जो दसवां अंश गुरु जी को नहीं देते वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। उनको अवश्य चाहिए कि दसवां अंश गुरु को दी जाए, जीवन जन्म सफल कर ली जाए। और जैसे पुण्यात्मा आप जी दान करते हो, आप जी के समक्ष इतिहास है, यहां पर खुली किताब है, सब कुछ यहां पर फ्री मिलता है, भोजन फ्री है, वस्त्र फ्री है। ये एक ना इधर बिहार साइड के आगे, और हमारा एक भक्त है वो बन गया, वो पहले बाबा जी बन रहा था, उसने काफी जनता को नाम दे रखा था, उसको ज्ञान होया अकबर मैं तो गलती कर रहा हूं, उसी दिन से उसने सबको त्याग दिया और कह दिया उनको कि मैं भाई तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं गलत साधना बता रहा था, गलत कर रहा था, मैंने उपदेश ले लिया है और तुम भी आ जाओ। तो वहां से वो हजारों की संख्या में अपने चेले ले आया था यहां पर, तो उन्होंने उनमें विकार सारे नो के नो, बीड़ी हुए पीवे, पान हुए खावे, तम्बाखू हुए खावे, सारा बेगन और सारे ऊट पटांग, क्यों न को भक्ति से लिंक थोड़ा सा उन्हें चिल्ले चिल्ले बनाने थे। तो वो यहां आए और यहां आकर के अपने मित्रों को फोन कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के, अरे यहां तो दूध भी फ्री, साबुन भी फ्री, तेल भी फ्री, यहां तो रोटी भी फ्री, तो यहां तो बस सारी ये फ्री है, और भगवान भी फ्री, मोक्ष भी फ्री। अब आइए फिर बुक्की जी का हाल सुनाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये वही स्वामी जी का जीवन चरित्र आपको फिर दिखाते हैं उसी स्थान से। ये इसके हम 79 पृष्ठ पर आ रहे हैं। अब यहां से स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता था चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती कि जिसमें मुझे ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। उन इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, या भजन क्यों करा करती, इसमें भूत था पहले भी एक। और जब और ये शिवदयाल जी गुरु ग्रंथ साहिब कबीर साहिब की वाणी आदि पढ़ा करता, पढ़कर सुना करता, और इस वाणी में इतनी शक्ति है कि उन भूतां कह जो कर जिस प्रकार मिर्च सी लड़ा करे ऐसा दर्द होता है, जैसे कांटे चो व्याकरण भूतां कह ऐसे इस वाणी का अर्थ दर्द होता है, तो वह बेहोश हो जाता भूत। वो पुजारा तन्यो के बू की भजन करे है, वह बेहोश करना भजन दे पड़ी या बुकी वजन करना है, या भूत नहीं है इसमें भूत, ये भी हो जाएगी ठीक थोड़े सेट हो जाएगी कुछ दिन में, आप बाज जाइए भूतनी इसमें निकल गए। तो कहते वो वजन करा करती, अरे आप गेर रही भूतनी, भूत पड़ा प्रेत इसके अंदर, वो दुष्ट आत्मा परमात्मा इसका इन्हें घड़ेगा और यहां से निकाल लेगा, ये हमारा काम नहीं, ये यहां तो एटीमेट, ये तो ऑल आउट है हमारी भक्ति, जो परमात्मा के मंत्र या साधना ऑल आउट है, ये भूत आप पर बाज जाएंगे। इनके भजन का ये हाल था, 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजात जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाया करती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज ही पढ़ रहे हम, ये देखिएगा। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी, मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब यू लेखक कह रहा है, वो प्रताप सिंह छोटा भाई शिवदयाल का, वो कह रहा है कि मेरे पन्नी गली वाले मकान में जैसे पहले वो वहां रहते थे शिवदयाल जी, तो उसमें पहले की तरह वो भोग भी तैयार करती थी। मेरे पन्नी गली के मकान में पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी वो चूरमा भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे भुक्की मां के। इब ध्यान से देखना, स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिर दम तक प्रगट रहे, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से, बुक्की इंटरनेट बन गई फिर, वो भूत आ गया उसमें शिवजाल जी, बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर लिया करते थे, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट कर लेती थी करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय, लेखक कह रहा है छोटा भाई शिवदयाल जी का, कि मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी और घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बोल भाई, बुक्की जी में टेलीफोन लग गया। फिर अब बुक्की के आगे बुक्की में भूत बैठा शिवदयाल जी, उससे अर्ज करते महाराज हमें ये आपत्ति है। फिर वो भूत फिर बताता उसने, ऐसे तो बहुत से प्रमाण यहां दिखा दें आपको। स्वामी जी महाराज से हुक्म लिया करता था, किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। जो भूत आदेश दे देता बुक्की बोला करती, उसमें भूत बोलता था बुक्की के शरीर में। इसी तरह से राय साहब ने भी, ये सालग्राम, राय साहब ने भी मौज की थी बुक्की के जरिए से, दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अपुन आत्मा कबीर परमात्मा कहा करते, मैं सच कहूं तो जग मारण बाजे और झूठ कही ना जाई हो, जब साची कहूं तेने को मारो मारो यू तो जुलाह झूठ बोलता है, अशिक्षित है, ये के जाने भगवान के बारे में, और झूठ मैं कह नहीं सकता, ये तो परमा देखो कब फैसला होगा महाराज इन झूठा का। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी आ गया भूत बनकर, क्योंकि नाम उनके थे ही नहीं, ना ये पांचों नाम काल के जानो, इनसे मोक्ष हो नहीं सकता। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा अंकल राधा स्वामी पंथ से संबंधित था, लगभग 20-25 वर्ष उसी की साधना करता करता वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो दो दो घंटे सुबह शाम खूब बैठ के चादर ओढ़ के ऊपर का चादर डाल के नो बैठ जाता था। जैसे हम तो कई बार न सोचा करते जीव सहक मर गया, ना हाथ हलाना, बिल्कुल शांत रहना, ऐसा बैठ जाता था। और उसने चूरमा खाने की आदत थी, ओका पिया करता, बीड़ी पीता था। फिर वो मर गया, मृत्यु के उपरांत वो अपने बेटे की पुत्रवधू में, अपनी पुत्रवधू में आकर बोलने लायक गया, बहुत बन गया, और वह काफी देर कभी बेहोश पड़ जा, कभी हाथ पैर पीटन लग जा, और फिर नो कह थरा काका बोलू हूं, थरा बाप बोलू हूं। फिर वो पूछा ताची करी सहने सपटिया, तू बोले वे थरा चाचा है इसमें, और इसकी तुम सेवा पूजा करो ना तो थारी गानी कर देगा। तो फिर हम कहते हैं उसकी लागे सारे पूजा करन, उसकी एक मंडी सी बनवा दी खेतों में, फिर भी आके वो ऐसे करे, और एक आधी बार वो ऐसी बात बता देता था जो हमारी सच्चाई हो जाती थी। फिर उसने तो तीसरा दिन तो चूरमा चाहिए, और वह उसकी पुत्र को दू पहले बीड़ी कती नहीं पिया करती, हुक्का नहीं पीती थी, और फिर वो हुक्का पीने लगी क्योंकि वो बहुत पीवे। और यदि उसकी हम ना इस तरह करते, इस गरीब आदमी रोज चूरमा कितने खुआओ उसने खागड़ दे, और नहीं जिस दिन दे तो उस दिन होगा थरा नाश कर दूंगा, ईंट का ईंट बजा दूंगा। फिर वो कह रहा था जी ईब आपकी शरण में लाए उसने, ईब उस चाचा राधा स्वामी तो पांडा छूटा मारा। अब यहां परमात्मा कह रहे हैं सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, झूठे गरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। ये प्रमाण है आपके सामने, कहते ऑथेंटिक प्रमाण, परमात्मा जो वचन बोल दिया वो कच्चा नहीं पा सकता, उसमें त्रुटि नहीं हो सकती, वो सटीक ज्ञान है परमात्मा का। झूठे गुरु के आश्रय है कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे, सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपादे। ओए होए, सतगुरु के सिजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करे भाई जम तोड़ेंगे ओठे। अब गरीबदास साहब जी क्या कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा जैसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं उनके यम के दूत ही ऐसे दूत मारेंगे, वो काल के दूत में रहेंगे, नरक में जाओगे जो संत की निंदा करते हैं। सतगुरु के सिजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट करोड़ों अपुणात्माओं, यहां पर जितनी भी पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की शरण में आए हैं सभी ने बीड़ी शराब मांस तमाखू ताश खेलना जुआ खेलना चोरी जारी ठगी बकवाद ये सब त्याग दिए। अगर ऐसा जो नहीं करता है और भक्ति भी करता है तो उसको लाभ नहीं होगा, ये पहला नियम है। अब देखो आज अपुणात्मा अमीन त्योहारों को मनाया करते त्योहारों को मनाते थे और क्या करते थे, गुटी सूटी लानी पी का दारू फिर बकवाद गढ़नी बम पटाखे छोड़ने सारा कोरा प्रदूषण की तरह आग लाग जाए। किसी एक बार की तरह आंख फूट गई, इकलौता पुत्र था उसकी आंखों में वो बम छोड़ दिया आंख में घुस गया काना हो गया कति वो बालक। एक बच्चे का हाथ जल गया कति आंगली काटनी पड़ी आखिर में गल गया वो। एक भक्त कह रहा था नोबला जी यहां नाम लिया उसने आकर, वो कह रहा था जी हमने 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, क्या कारण? मैंने उनसे कहा ना भाई ऐसे ऐसे नियम है। बोला जी महाराज ऊँ को नहीं मनता त्योहार, क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष एक दो ऐसी मौत हो जाती है कि हम त्योहार मना नहीं सकते। बताया उसने एक बार मेरी बहन का बटे वो मर गया, फिर ऐसे भाई मर गया, फिर नो ऐसे रिश्तेदारी में कति निकटतम चोट, फिर चाचा का लड़का मर गया। कहते हैं 7 वर्ष हो गया हमने आज तक त्योहार नहीं मना लिए। अपने आत्माओं जब बिजली गिर जाए जब तो हम त्योहार छोड़ जाए, क्या फिर वो उद्देश्य वो कहाँ गए जिसके लिए तुम इतना खाड़ा करा करते। संत बताते हैं न जाने काल की कर डारे किस विज ढड़ जा पासावे। नानक साहेब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे किस विद डल जा पासावे, जिनके सिर ते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। अब नानक साहब जी से पूछा करते हे संत जी हे महाराज आप ये त्योहार वगैरह नहीं मनाते, खुशी नहीं मनाते, आप खुश नहीं नजर आते। तो वो कहा करते थे कि भी अब यहाँ किस चीज पर खुशी मनावे, न जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। एक लड़के की शादी थी, पहले तो डीजे बाजे नाचे सारी बहन बेटी भाई सब कुछ बहुत मस्त आ रहे दारू पियो और खेल खेलो रे। अगले दिन वो बरात में जावे थे कलानोर के पास, उनकी वह गाड़ी एक्सीडेंट होगी 6-7 मर गए और वो दूल्हा भी मर गया। इव टक्कर मारन लग रहे वो कहाँ गई वो डीजे। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि इस गंदे लोक में खुशी मनाने की जरूरत नहीं आती, पीछा छुटाने की आवश्यकता है, अपना काम निकाल लो। आज ये होली है, होली का त्योहार है, आज ये फागुन है। आज के दिन क्या किया जाता है गांव में तो और ज्यादा कमाल है, एक दूसरे का कोरडे बना लेंगे वो मारेंगे बहन बेटियां हैं, और वो उस पर रंग ठोक कर और कोई गुलाल लाओ बांदर सामू करें अंडा सारे दिन। और हम उसी दिन से जिस दिन ये नाम लिया है और बच्चे हमारी शरण में आते हैं उनको सबको इसके लिए मना कर देते हैं, बच्चे ये भगत के लिए अच्छी बात नहीं, वो भगत नहीं होता जो बकवाद करे। संत सोए जो सीधा चले, हमने सीधा चलना है, संसारिक बकवादों से हटना है, तभी हमारे अंदर और आम समाज में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होएगी, इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर धीरे धीरे पड़ेगा। तो आज वो दिन है, आप जाकर देख लो शहर में गांव में वहां और कईयों के तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, कई हत्याएं भी हो जाती हैं आपस में, मर्डर हो जाते हैं, और आप जी इस दिन को कहां सदुपयोग कर रहे हो? कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और इसे सतगुरु की जो निंदा करे फिर काल जब तोड़ेंगे होठे। कहते हैं ऐसे संत ने भी बिसरा में बुंडे बोले, उनकी बिरान माटी करेगा फिर यम के दूत समारेंगे उन्हें। सतनाम के जाप से बजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपादे। परमात्मा कबीर जी की दया से ये सब बकवास छूटेंगी। अब क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी आंखों देखा धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। हो अपुनात्मा आपको भी बताया था कि जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं दो चार वर्ष सत भक्ति करके और खिसक जाते हैं, वो वैसे स्वाभाविक टल जाते हैं भोलेपन में, सत्संग ना सुनने से सामाजिक रंग चढ़ जाता है, कोई बात नहीं। फिर वो कहां जाते हैं, जैसे प्रथम मंत्र के जाप से आपको पहला नाम दे है ना, मैं उसमें सात मंत्र हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी की भी मजदूरी है, विष्णु जी की भी और शिव जी की भी, दुर्गा और गणेश जी के भी जाप आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ये भगवानों का यहां तक कब्जा है इस शरीर में। तो हम जीव जो है यहाँ हृदय कमल से चलते हैं, मूल कमल में जावांगे नीचे गणेश जी के में, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराते हुए फिर हम यहाँ आएंगे, ये यहाँ पर बैक साइड में दुर्गा के लोक पर, यहां से फिर आगे जाएंगे त्रिकुटी पे। तो यहां जाने के लिए हमें नीचे के सारे नोड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। तो संसारिक जो कार्य कार्य है यहाँ की सुविधा भी आपको इन मंत्रों से प्राप्त होती है। तो इन मंत्रों के बचे हुए जो अपार नहीं हुए क्योंकि वो टल गए, सतगुरु विमुख हो गए। कहते हैं मानुष जन्म पाके खोए और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। जो सतगुरु से विमुख हो जाते हैं, यहां से टल जाते हैं, निकल जाते हैं कुछ देर साधना करके, फिर वो कहां जाएंगे? जो गुरुद्रोही नहीं हुए, गुरुद्रोही की तो उस पर कैंसिल कर देता सदा के लिए, सारी साधना नष्ट हो जाती है उसकी। तो वो कहां जाते हैं? विष्णु जी के जाप के आधार से विष्णु जी के लोक में, शिव जी के मंत्र का जाप के आधार से शिव जी के लोक में, गणेश जी के लोक में। तो वहां जाकर यदि ये ज्ञान उसके हृदय में समाया हुआ है, उसको वहां जाकर याद आवेगी मैं तो गलत आ गया, मैं तो या तो मेरी पूंजी बर्बाद होगी, मेरा नाम कमाई नष्ट होगी, ये बात ये ज्ञान वहां भी याद आओगे आपके। तो इतने दयालु है ये परमात्मा, कहते वहां भी यदि तूने मुझे याद कर लिया आत्मा से रोक है। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। वहां से भी कहते छुटवा के ले आऊंगा तेरे को नालायक, और फिर इस भक्ति युग में फिर जन्म देंगे, सटोक में रख लेंगे परमात्मा उनको भी। तो क्या बताते हैं, धर्म राय दरबारे में जई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ये धर्मराज के पास जाके परमात्मा वहां पहुंचे, धर्मराज कुर्सी छोड़ के अपना तख्त छोड़कर खड़ा हो गया और परमात्मा डांट मार रहे हैं गरीबदास को ये दिखाने के लिए, कदे मैं तो नरा बाबा जी लगता हूं अब, क्योंकि आंखें देख ले आदमी जब दर्द होया करे तो भाई और बात है, तो फिर उसकी तभी गुण गाए जाते हैं। बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़ी, तुमरे हंस न चंप हूं दो ही लाख करोड़, मदहारी जारी न राये भांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको लो अकनाही। धर्म राय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ हूं जड़ हूं तोक जजीर। अब क्या है कि वहां कबीर परमेश्वर ने कहा उस धर्मराज को, जैसे डांट मारता है ना बड़ा अधिकारी अफसर छोटे अफसर पे, बहुत छोटे अफसर पे, एसपी एसएचओ पे, जैसे उसको हिदायत देते हुए कहता है, तो ऐसे परमात्मा, बल्कि हम यहां तुलना करें कि चलो हम उदाहरण ये इतना ही काफी है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो उसको रोब से बोलता है और ऐसे तो शिष्टाचार के नाते जी सर बोलता है। तो ऐसे कबीर परमात्मा जी वो पूर्ण ब्रह्म धर्मराज को कह रहा है, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, यानी वहां पर उसको धिक्कारा, डांट मारी। धर्मराज के दरबार में कबीर परमात्मा ने जाकर डांट मारी, धिक्कारा उसको, गरीबदास जी को ये दिखाने के लिए कि ये मेरे सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं है। धर्मराज से कहा भगवान ने कि जिसने मेरा नाम ले रखा हो और वो किसी कारण से भटक गया हो, गुरुद्रोही ना हुआ हो, उसके लिए कहते उस बुल्ले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। पुणात्माओं ये याद दिलाना चाहते हैं, मालिक बन जा भूल थरे थे, तो जब धर्मराज के दरबार में जाओ और वहां अकाउंट आपका हो है, तो आपको ये बात याद आऊंगी कि हमारे कबीर परमात्मा के भगत का अकाउंट धर्मराज या कोई नहीं ले सकता, वो पकड़ नहीं सकते हमारे को। तो वहां आप याद करोगे कि हम तो गलत आगे, हे भगवान हे परमात्मा, और आप कहोगे हम तो जी कबीर जी के शिष्य हैं, हम तो कबीर जी के अनुयायी हैं, आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते। तो कहते हैं उसके बारे में क्या कहा है। अब धर्मराज फिर क्या कहता है, परमात्मा आपके नाम लेने से पहले, आपकी शरण में आने से पहले ही ना बहुत से पाप इकट्ठे कर रखे होते हैं, तो वो मेरे पास इसके बैड अकाउंट में जमा होते हैं, और यहां का नियम है कि जैसे कर्म जो करेगा वो भोगने पड़ेंगे। तो जो इसने जो पाप कर रखे होंगे उस आपके हंस ने पहले, तो उनका तो भुगतान मैंने करवाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते नहीं, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते उनको हमारे पास भेज दे, तो उसका लेखा जोखा मत करना। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तुम पकड़ो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस न पकड़ू नहीं मन दुआई लाख करोड़े। आपके हंस ने मैं नहीं चंपूंगा, मैं नहीं पकड़ के लाऊंगा। फिर क्या कहता है, मधारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाई, पर दारा पर घर तक हैं जिनको लू अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ हूं और जड़ हूं तोक जंजीर। चुंबक रूपी शब्द है ये लोहे रूपी जीव, पर्दे माही भेंट हूं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमरा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय तेरी बंद से हम ले उड़े अचान। जाकट नौबत नामे की जाकू पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिनकी जोन। कर्मों से तीरत थे अब है जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मार हूं और काढ़ू बल तकसीर। पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मदास से नाम रटे मम जोई। कर्म भ्रम ब्रह्मंड के ये पल में करहूं नेश, नेश माने नष्ट कर दूंगा पल में। कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के मैं सब कैंसिल कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, कबीर परमात्मा कहते हैं। कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी दोही देई सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मा पुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। साहिब पुरुष कबीर को जन्म दिया नी कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घटघट बोले सोए। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का ये वाणी ब्रह विदेश। ये गरीब दास जी ने आंखों देखा कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी और धर्मराज की वार्ता। इसमें क्या बताया है? अब धर्मराज कहता है भगवान जिसने पहले कर्म किए वो तो मैं भुगतवाने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहता है कि इन सब पापों का मैं नाश कर दूंगा और मेरा भक्त आगे गलती करेगा नहीं। तो फिर क्या बताते हैं? और फिर आप पे कहे हैं धर्मराज, जा घट नौबत नाम की जाकू पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिनकी जून। के जिनके पास आप जी का नाम है उसके निकट कौन आ सकता है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और जिनके पास नाम नहीं है उनने तो छोड़ू नहीं, वो तो मैंने 84 लाख योनियों में डालने पड़ते हैं। अपनात्मा किसके पास नाम है? जैसे आप जिन उपदेश ले लिया और मर्यादा में रहे नहीं तो आपके पास नाम नहीं रहा। पूर्व नाम जब मर्यादा में रहते जो कमाई उसकी की वो कमाई कमाई रह गया, आगे नाम नहीं रहा। गुरु के दिल से उतरे वो नाम बेहू ना होवे, जाको काल घसीटे ही राख सके ना कोई। ये है परमात्मा की गाइडलाइन जो हमने ध्यान रखने हैं। इन्होंने वह नाम ले लिया तो फिर पारे हो गया नहीं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी आखिरी सांस तक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। गरीबदास साहब जी के पास बहुत से कुछ भक्त हो गए थे, आसपास के गांव के भी थे। तो गरीबदास साहिब जी के पास वो गांव के व्यक्ति भक्त इकट्ठे होकर, कुछ भगत और कुछ बिना भगत। भगत तो साधना ये खेल ख्याल खेलिया नहीं करते। तो आसपास के व्यक्ति आए, कहने लगे गरीबदास जी के, काजा महाराज होली खेल लेंगे, होली खेलेंगे, फाग खेल लेंगे। गरीबदास जी बोले, भाई हम यह नकली होली नहीं खेला करते, हम तो राम नाम की होली खेला करें, वह खेलनी होता जा मेरे पास। तो क्या बताने लगे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन स्थान राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। हम तो ये हमारा जो मन है अपने मन राजा को हम ऊपर ओली खिलाते हैं, ऊपर के लोक में ले जाते हैं, वहां की ओली से इसको परिचित करा दिया ऊपर के सुख से। अब यहाँ की नकली होली हम नहीं खेले। सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। अब गरीबदास जी कहते हैं हम ये कर्म नहीं करा करते, ये इस तरह की बकवाद, हमने सतगुरु पूर्ण मिल गए और अब हम उनकी मर्यादा में रहकर अपनी क्रिया